आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन से, जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो हमारी पूरी पृथ्वी को सराउंड करता है एक घेरे बनाकर, और उसमें हमारी पृथ्वी रहती है, उसे बोलते हैं पर्यावरण। चलिए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मतलब एक बच्चा है जिसका नाम है रवि, वो अपनी लंबी की गर्मी की बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब वो अपने स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा कि स्कूल के पास एक जो ग्राउंड था जहां पर उसके दोस्त और वो सब खेला करते थे, उस मैदान में बहुत ज्यादा खुदाई हो रही थी। उसे पता चला कि वहां पर एक बड़ी सी मल्टी बिल्डिंग बनने वाली है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट बनेंगे। तो फिर उसको समझ में आया कि जो मुलायम घास वाला इतना अच्छा, इतना सुंदर उसका ग्राउंड था, वो हमेशा के लिए खराब हो चुका है। तो ये सोचकर वो रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जब उसने ये चीज देखा, तो उसने अपने दोस्तों से भी ये बात शेयर करी कि किस तरीके से हमारा वो जो ग्राउंड है उसे खराब कर दिया गया है। और सुबह जब असेंबली हो रही थी प्रेयर के टाइम पे, उनके प्रिंसिपल ने भी बहुत उदास होकर ये कहा कि देखिए हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, लोग कैसे इसको क्षति पहुंचाकर, यानी कि हानि पहुंचाकर, हार्म करके और अपनी चीजों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब सभी लोग बहुत दुखी थे उस मैदान के नष्ट हो जाने के बाद, क्योंकि सभी की वहां से यादें जुड़ी हुई थी और सब जो बच्चे थे वहां पर जाकर खेला करते थे। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने पास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो फिर जब वो क्लास में गया अपने रवि, तो उसने अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण होता क्या है, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल है उन्होंने असेंबली में बोला था प्रेयर के टाइम कि हमारा पर्यावरण बहुत बदल रहा है, तो वो जानना चाहता था कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो उसके टीचर ने बोला कि आपके आसपास आप जो भी चीजें देखते हो उसे पर्यावरण हम कह सकते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो रवि ने बोला कि अगर ऐसा है तो क्या ये जो हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है, हमारी क्लास में ये जो कुर्सियां रखी हुई हैं, और ये जो बड़ा सा खुला मैदान है, सड़क है, कूड़ा कचरा है, मेरे दोस्त हैं, और क्या ये सभी पर्यावरण का अंग है, उनका पार्ट है? हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। उनके शिक्षक ने बोला हाँ, लेकिन उन्होंने उसको ये भी समझाया कि कुछ चीजों का जो निर्माण है वो प्रकृति ने किया है, मानव ने नहीं किया, जैसे कि पर्वत जो है, पहाड़ और नदियां, ये सारी चीजें प्रकृति ने खुद बनाई हैं। और मानव का क्या निर्माण है? सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सारी चीजें मानव निर्मित हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो उनके टीचर ने उनको एक काम दे दिया कि आप लोग दो दो के ग्रुप्स में बढ़ जाओ, आप जैसे बैठे हो उसी के हिसाब से, और आपको एक मैनमेड चीज की और एक नेचुरल चीज के बारे में आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है। यहाँ देखिए बच्चे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपस में। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? मतलब जो बच्चे थे वहां पर कक्षा में, इनका नाम बताया गया, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा, ये सब लोग बहुत एक्साइटेड थे वो लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर इकबाल ने ये पूछ लिया कि हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण है। तो जब उसने क्वेश्चन पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो उसके टीचर ने आंसर किया, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए हमारी जरूरतों की वजह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, मतलब हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी नीड्स हैं, वो हर दिन बढ़ती चली जाती है। इस ब्लू बॉक्स पर आ जाइए एक बार। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट एलिमेंट है, वो जो कि हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है और रहने के लिए भूमि देता है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो कोई भी मानव या कोई भी जीवाणु जीवित नहीं रह पाएगा। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं या चेंज लेकर आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो किस तरीके से है? जो कार का धुआं होता है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है, जो हमारी हवा होती है उसको दूषित कर देता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, खाने को बर्तनों में परोसा जाता है और जो धरती होती है उस पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। तो ये कार, मिल, बर्तन ये सब बनाने के लिए जो काम वो करता है, उसकी वजह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अगले पेज पर आ जाइए। यहाँ पर पर्यावरण के घटक, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो कि पर्यावरण को बदल रही हैं या हानि पहुंचा रही हैं। अब आ जाइए पर्यावरण के घटक पर, जिसका मतलब होता है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि पर्यावरण को बनाते हैं। तो देखिए, साइड में दिया हुआ है प्राकृतिक, जिसमें है स्थल यानी कि स्थल मंडल, सजीव जिसमें सारे स्थल, जल और वायुमंडल एक साथ होते हैं उसे बोलते हैं जैव मंडल, फिर वायुमंडल जो वायु होती है जिसमें, और जल, जल मंडल। फिर राइट हैंड साइड में देखिए मानव निर्मित जो चीजें हैं वो क्या है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। फिर आ जाइए मानव खुद, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति। तो ये सारी चीजें मिलाकर पर्यावरण बनती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, मतलब कुछ चेंजेस हम खुद ही करते हैं और कभी कभी उन चेंजेस को खत्म भी कर देते हैं हम। यहाँ ब्लू बॉक्स पर आइए। जीवेय, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, मतलब ये वो लोग होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजीवीय पदार्थ कौन से होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, मतलब जैसे जल हो गया, स्थल हो गया, वायु हो गई, तो ये अजीवीय होते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब ऊपर जो यहाँ पर पूरा आपको फ्लो चार्ट गिवन है, ये समझाने के लिए दिया गया है कि कोई भी एरिया के, किसी भी स्थान के अगर जो वस्तु, लोग और प्रकृति को हम मिला दें, तो सबको मिलाकर क्या बोलेंगे हम? एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर लाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, उसको पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो ये जीवीय और अजीवीय दोनों यहाँ पर स्थितियां हैं, मतलब यहाँ पर जीवित प्राणी भी रहते हैं और निर्जीव भी रहते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। मतलब जो मैन मेड जो एनवायरमेंट है, उसमें मानव ने जो चीजें बनाई हैं वही सब कुछ सस्टेन करती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, जो टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब जो हमारी जो लैंड होती है, पानी होता है, हवा होती है, पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं, वो सब कुछ मिलाकर एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। तो जो हमने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा होगा स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जैव मंडल के बारे में। तो ये सब हमने लास्ट अपनी जो सिक्स क्लास थी उसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इनके बारे में और क्या जानकारी और क्या फैक्ट हमें पता चलते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, मतलब जो हमारी अर्थ का जो सबसे हार्ड वाला जो पार्ट होता है और ऊपर से कठोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो इसमें अपना घर बनाकर रहते हैं जमीन खोदकर, तो ये स्थल मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर और भी जीव रहते हैं, जैसे चूहे को देख लीजिए आप, वो बिल बना के रहता है, सांप रहते हैं, तो ये स्थल मंडल के इलाके में ही रहते हैं। और ये जो चट्टानों से ढका हुआ होता है, मिट्टी की पतली परतों से ढका हुआ होता है जिसमें ये जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है, ये पहाड़ भी हो सकता है, ये प्लेट्यू यानी कि पठार भी हो सकता है, कोई खुला मैदान या घाटी भी हो सकता है, तो इसकी जो बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पे भी पाई जाती हैं, मतलब ये जो ठोस जमीन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, वो सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट्स पे ही नहीं, जो हमारा ये इतना समुद्र होते ना इतने गहरे गहरे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खोखला है उसके नीचे कुछ भी नहीं, बस नीचे नीचे जाते जाइए। हमारा ये जो समुद्र है उसमें भी एकदम नीचे जाकर ऐसी भूमि है जो कि बहुत गहरी है, मतलब आप बहुत नीचे जाएंगे तब आपको जाकर मिलेगी। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, मतलब वो इलाका बोला जाता है स्थल मंडल जो हमें फॉरेस्ट देता है, हमें कृषि करने के लिए जगहें देता है, बस्तियां बनाने के लिए हमें भूमि देता है और हमारे जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, मतलब यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, हमारे ये जो अर्थ क्रस्ट होता है यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ देखिए चित्र 1.2, पर्यावरण के क्षेत्र। देखिए जो पानी में पूरा जीवन पनपता है उसको बोलते हैं जल मंडल, जो जहां पर हमारा ये एरोप्लेन उड़ता है और जहां पर पशु पक्षी उड़ते हैं उसे बोलते हैं हम वायुमंडल, और जो जमीन है उसे हम बोलते हैं स्थल मंडल। जहां पर ये तीनों की मिलीभगत हो जाती है, जहां पर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पर बनता है जैव मंडल यानी कि जीने की स्थिति। अब यहाँ ऊपर आइए पर्पल बॉक्स पर, शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनियर या एनवायरोनियर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, मतलब इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जो इसको लिया गया है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है पड़ोस। अब इस नीचे पिंक बॉक्स पर आइए, आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए, मतलब आपको अपने आसपास की जमीन देखनी है और ये देखना है कि आपके पड़ोस में जो भी जमीन है उसका उपयोग किन चीजों के लिए हो रहा है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी है आपको। नाउ कम टू दिस येलो बॉक्स, आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वे कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे? तो ये आपको बताना है कि आपके स्कूल में, आपके घर में जो आप पानी पीने के लिए और बाकी चीजों के लिए यूज करते हो, वो एक्चुअल में आता कहाँ से है, आपके शहर में कहाँ से उसकी व्यवस्था की जाती है, क्या वहां पर कोई नदी है या तालाब है या फिर बांध है, और हमारे जीवन में पानी की क्या क्या उपयोग है उसके आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको ये भी बताना है कि क्या आपने कभी किसी को पानी वेस्ट करते हुए देखा है, और देखा है तो कैसे वेस्ट करते हुए देखा है, वो भी आपको बताना है। फिर आ जाइए नीचे वाले पिंक बॉक्स पर, आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। तो स्कूल जाते समय आप एक बार आसमान की तरफ देखें कि उसका हाल क्या है। चलिए अगले पेज पर आ जाइए, चित्र के नीचे आ जाइए, चित्र 1.2 के नीचे। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, मतलब जल मंडल वो होता है जहां पर पानी होता है, तो ये इसमें सारे रिसोर्सेज आते हैं जल मंडल में, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो समुद्र हो या महासागर हो। तो सब जितने भी प्रकार के जलाशय होते हैं, इवन आपके जो पोलर आइस कैप्स होते हैं जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमे हुए होते हैं, हिम नदियां जो होती हैं जो कि हिमालय में जम जाती हैं नदियां, वो नदियां भी जलमंडल में काउंट होती हैं। और जलमंडल हर एक जीवित प्राणी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक कवच जैसा फैला हुआ है जिसे हम अपना वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, मतलब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हमारा ये एटमोसफेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के रखता है, और ये हमें जो सूर्य की इतनी हानिकारक जो यूवी रेज होती हैं उससे बचाता है, और भी बहुत सारी जो जैसे ओजोन जो रेज होती है उससे भी बचाता है। तो ऐसी बहुत सी किरणें हैं जिनसे ये हमें बचाता है। अगर ये नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है वो भी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरह या तो बहुत गर्म होती या तो बहुत ठंडी होती, और यहाँ पर कोई जीवन व्यापन नहीं कर पाता। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे प्रकार की गैस होती है, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, और जल वाष्प यानी कि मॉइस्चर होता है। धूल के कण आपने देखा होगा, अगर कोई अंधेरा कमरा है वहां से अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो आपको सिर्फ छोटे छोटे कुछ रेशे जैसे उड़ते हुए दिखेंगे पूरे कमरे में, जहां जहां वो रोशनी आएगी, तो उसे धूल के कण कहते हैं। अगर वायुमंडल में कोई भी चेंज आता है तो इस वजह से मौसम और जलवायु में भी चेंज आ जाता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये जैव मंडल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम, या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, मतलब लिविंग सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। और ये वो क्षेत्र होता है पृथ्वी का जहाँ पर जल, स्थल और वायु एक साथ होते हैं, मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब अपन जानेंगे कि परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। जो रवि था उसके कक्षा में एनसीसी कैंप में जस्सी ने एकदम शॉक में होकर बोला, बहुत खुशी के साथ लेकिन, कि कितनी झमाझम बारिश हो रही है, इससे मुझे मेरा केरल याद आ गया। मतलब वो केरल का रहवासी था तो उसको केरल याद आ गया, उसने ये बोला अपने दोस्तों से कि तुमको केरल चलकर एक बार देखना चाहिए कि वहां पर हरे भरे खेत रहते हैं, नारियल के बागान रहते हैं और एकदम झमाझम वर्षा होती रहती है, कितना सुंदर दृश्य होता है वो। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तभी क्या हुआ कि जब इसकी बात सुनी, जस्सी की बात सुनी, तो एक लड़का था जिसका नाम था हीरा, उसने बोला कि हमारे जैसलमेर में तो बारिश ही नहीं होती है, हमें दूर दूर तक सिर्फ रेत और कंकड़ दिखते हैं। तो रवि ने बोला, वहां पर ऊंट भी तो होते हैं, मतलब रवि ने ये बताते हुए बोला कि तुम जहां रहते हो वो क्षेत्र भी बहुत सुंदर है क्योंकि वहां पर ऊंट पाए जाते हैं। अब इस शब्दावली पर आ जाइए, राइट लेफ्ट हैंड साइड पर। परितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि परितंत्र का मतलब क्या होता है। तो परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसमें जितने भी जीवधारी होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं। अब इस ब्लू बॉक्स पर आ जाइए, येलो बॉक्स पर आ जाइए जो नीचे दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र या फोटो लाइए, मतलब जो कहानी के जो बच्चे अपने अपनी जगह के पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, वैसे भी आप भी बताइए और पता लगाइए अपने एरिया के पर्यावरण के बारे में। यहाँ देखिए चित्र 1.3, एक ताल का परितंत्र, मतलब एक तालाब का इकोसिस्टम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है जहां पर सभी पशु पक्षी एक साथ जी रहे हैं। अब अगले पेज पर आ जाइए। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो जो हीरा था जो कि जैसलमेर में रहता था, उसने ये बोला कि वहां ऊंट तो अवश्य मिलते हैं लेकिन और भी ऐसे छोटे छोटे कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप और वहां पर बिच्छू भी देखने को मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? और रवि को जानकर ये हैरानी हुई कि हर जगह का जो जीव जंतु है, जो वहां के पेड़ पौधे हैं, लोगों का रहन सहन है, ये इतना अलग क्यों है? क्या ये सभी एक दूसरे के साथ संबंधित है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। तो फिर शिक्षक ने उनके बोला, जब रवि ने ये सोचा तो उसने बोला, हाँ सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, यानी कि हम मानव भी जो होते हैं, यहाँ तक कि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे पेड़ है वो हमारे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो हम लेते हैं, तो इस वजह से हम एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, मतलब जितने भी जीवित लोग हैं उनके आपस में जो आसपास का उनका पर्यावरण है, उनके बीच का जो एक रिलेशन है वही इकोसिस्टम को बनाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, मतलब बहुत जहां पर बारिश होती है ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां जो ग्रासलैंड्स होती है, मतलब जो घास के स्थल होते हैं, रेगिस्तान, पर्वत, इन सब जगह की, यानी कि एक छोटा सा छोटा अगर तालाब भी है उसका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? बिल्कुल, जिस पार्क में उसके दोस्त और वो खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फूल और छोटे छोटे कीट और तितलियां थे। ऊपर आ जाइए राइट हैंड साइड पर ब्लू बॉक्स पर। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि ये आपके चैप्टर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस येलो बॉक्स। शब्दावली, वस्तु विनिमय पद्धति, वह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, मतलब बार्टर सिस्टम। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि लोगों के पास ना पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पैसे बने ही नहीं थे तब। तो लोगों को अगर कोई चीज खरीदनी होती थी या मान लीजिए अगर लेनी होती थी, तो वो क्या करते थे, अपनी कोई चीज सामने वाले को दे देते थे और उससे अपनी पसंद की चीज या अपने जरूरत की चीज ले लेते थे। अब आ जाइए मानवीय पर्यावरण पर। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मतलब जो हम मानवीय पर्यावरण हमने जो बनाया है, मैन मेड एनवायरनमेंट जो हमने बनाया है, वो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू बना है। और बहुत शुरू के टाइम पर जब हम सिर्फ जन्म हमने लिया था, बहुत हमें पता भी नहीं था कि कैसे किस चीज का निर्माण करना है, तो हमारे आसपास की जो चीजें थी उनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी जो आवश्यकताएं थी वो और बढ़ती गई और हमने हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस करना सीख लिया था। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। मतलब जो मानव था जब पृथ्वी पर आया, तो उसने फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, यहाँ तक कि एक जगह पर घर बनाकर रहना भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। फिर पहिए का विकास हुआ था जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह हमारे लिए जाना बहुत सरल हो गया। फिर जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, तब उस टाइम पर विकास हुआ वस्तु विनिमय पद्धति का, मतलब बार्टर सिस्टम का। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, मतलब फिर उसके बाद बिजनेसेस शुरू हो गए थे बार्टर सिस्टम के बाद से। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मतलब जो व्यापार हमारा शुरू हुआ था, उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति थी, मतलब इंडस्ट्रियल जो रायट था, उसकी वजह से जो हरित क्रांति वगैरह थी हमारे यहाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इस टाइप के जो रेवोल्यूशंस थे जो कि इंडस्ट्रीज के थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगा था। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी काफी अच्छा बेहतर हो गया था। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। क्या आपको पता है कि जब हम गर्मी में हमें सारे रसीले जो फल होते हैं उनका रस पीने की बहुत आदत होती है, और ठंडियों के टाइम पर हम ज्यादातर मूंगफली खाते हैं भुनी हुई या गर्म चीजें लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकृति का संतुलन है उसको बिगाड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति और मानव के पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन होना चाहिए और हमको हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही सस्टेनेबल तौर पे यूज करना चाहिए, ताकि हम आगे की जनरेशन के लिए भी उसे बचा पाए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के क्लास में एक लड़की है जो कि मिजोरम साइड की है, उसका नाम है नूरी। तो वो हमेशा अपने यहाँ की मिजोरम की बहुत हरी भरी जगहों की बात करती रहती थी। तो जब उसने देखा कि रवि इतना उदास हो गया है वहां का वो मैदान नष्ट होने के बाद, तो उसने बोला कि अगली जब गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो तुम मेरे घर मिजोरम आना, मैं तुमको वहां पर अपनी यहाँ की हरियाली दिखाऊंगी। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। तो उनके टीचर्स ने उनसे बोला कि आप लोग जहां पर भी जाओगे छुट्टियों में, आपको वहां की पिक्चर वगैरह सब बनाकर लेकर आनी है कि आपने वहां का पर्यावरण कैसा देखा। अब इस पिंक बॉक्स पर आ जाइए, साइड में जो दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। पहला, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास आसपास कैसे पेड़ थे, क्योंकि जब वो आपकी उम्र के रहे होंगे तब बहुत ज्यादा हरियाली रही होगी, तो ये आप जरूर जानिए। सेकंड, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, कौन कौन से खेल ऐसे थे जो वो लोग अपने घरों के अंदर ही खेलते थे। थर्ड, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा, उनका फेवरेट फ्रूट हुआ करता था उस टाइम पर। एंड फोर्थ इज, गर्मी एवं सर्दी के मौसम में वे कैसे बिताते थे, तो वो कैसे बिताते थे ये भी आपको उनसे पूछना है। प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो ये आप लोग के लिए काफी अच्छा टास्क है, इस चैप्टर को समझने के लिए प्लीज डू इट। अब आ जाइए अभ्यास प्रश्न पर। पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, परितंत्र क्या है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 4। शब्दावली में जो परितंत्र लिखा हुआ है वो पूरा आपका आंसर है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वो होती है जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वो खुद बखुद निर्मित हो जाती है। थर्ड इज, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 2। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये तीन घटक हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2 पर। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल और सड़क। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल के बारे में आपका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 3 पर, प्राकृतिक पर्यावरण की 2nd पैराग्राफ में। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, मतलब 2 मेन एलिमेंट हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब आ जाइए जैव मंडल क्या है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर, तीसरी लाइन पर आइए ऊपर से। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाइए, सही का चिन्ह लगाकर आपको उत्तर देना है। इसमें पहला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मरुस्थल। अब आ जाइए सेकंड पर, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल। नाउ कम टू थर्ड, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क। फोर्थ, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पर, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैव मंडल, इसका आंसर है 6, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध, वायुमंडल। इसका आंसर है 1, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल, जलीय क्षेत्र, पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन पर, कारण बताइए। पहला, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो वो कार्य करता है उससे हमारे जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। सेकेंड, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित इसलिए हैं क्योंकि पौधों को जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो जीव जंतुओं से मिलती है और जीव जंतुओं को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो पौधों से मिलती है। नाउ कम टू 5th क्वेश्चन, क्रियाकलाप, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाए, तो ये आपका काम है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।